सभी को नमस्कार। जगत गुरु एवं दिव्य लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उनकी भक्ति में अंतर्बाह्य पूर्ण रूप से सराबोर कर दिया है। उन दिव्य भावभक्तिमय क्षणों की अनुभूति लेते हुए हम सभी मिलकर श्री कृष्ण के परम पावन श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे जगत के पालन करता, हमें संभालने वाले आप ही हैं। हमें साधना में योग्य मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। हे भक्तवत्सल श्रीहरि, हम अनंत अनंत बार आपकी शरण आए हैं। हे मुरलीधर श्री कृष्ण, आपकी मुरली के भक्तिमय मधुर सुरों से हमारा अंतकरण आनंदित होकर झूम उठे। हम अपना देहभान भूल जाए। हे मधुसूदन, हे मनमोहन, हम सभी के मन आपकी भक्ति में ही तल्लीन हो। हमारा अंतरंग आपकी भक्ति से ओतप्रोत हो जाए। आपके भक्ति सागर में हम ऐसे डूब जाए कि उससे हम कभी भी बाहर न निकल पाए। केवल और केवल आपकी भक्ति में ही रममाण हो जाए। ऐसी आपके श्री चरणों में हम भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप की अनुभूति लेते हुए उनके तेजोमय रूप के श्री चरणों में श्लोक रूपी पुष्प अर्पण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान की मनोभाव से आराधना कर, उनकी उत्कट भक्ति कर, गोप गोपियों समान श्री कृष्ण से एकरूप होने के लिए व्याकुल सभी कृष्ण भक्तों को मेरा अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार। अभी ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी हुई। इस जन्माष्टमी के निमित्त से हम सभी श्री कृष्ण के तत्व से एकरूपता अनुभव कर उनके भक्ति रस से सराबर हो गए हैं। अब भी हम उनका तत्व अनुभव कर रहे हैं। श्री कृष्ण भक्ति की महिमा ऐसी है कि एक बार यदि कोई उनकी भक्ति आरंभ कर दे, एक बार उनकी भक्ति का मधुर रस चख ले, तो भक्ति के माधुर्य से वो इतना आकर्षित हो जाता है कि उससे बाहर निकल ही नहीं पाता। उस भक्ति के अमृत रस के प्राशन से मानो अमरत्व ही प्राप्त हो गया हो। ऐसे हम भक्ति में डूब जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत हम सभी को भक्ति रस में डुबाने के लिए भगवान की और कौन सी लीला है। जन्माष्टमी निमित्त अपने अंतकरण को हुआ कृष्ण भक्ति का स्पर्श आगे आनंद का रूप धारण करता है। वह आनंद हम कौन से रूप में अनुभव करते हैं? निश्चित ही भगवान ने हम सभी को उत्तर दिया होगा। श्री गणेश चतुर्थी। श्री गणेश के आगमन की तैयारी जन्माष्टमी के उपरांत आरंभ होती है। आम के पत्तों की टहनियाँ, विविध प्रकार के फल, गुजिया, मीठी पपड़ी बनाते हैं। श्री गणेश मूर्ति की स्थापना करने के लिए सुंदर मखर तैयार किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अर्थात गणेश चतुर्थी को होने वाले श्री गणेश के आगमन से लेकर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अर्थात अनंत चतुर्दशी तक गणेश भगवान सभी को आनंद प्रदान करते हैं। पूजा अर्चना, भजन, आरती इत्यादि से श्री गणेश की उपासना का आनंद लिया जाता है। इसीलिए गणेशोत्सव ये आनंदोत्सव है। इस निमित्त से परम कृपालु गुरुदेव जी आपत्काल की दहलीज पर खड़े हम सभी को विघ्नहर्ता गणेश की विशेष और अनोखी भावपूर्ण आराधना कैसे करनी है ये सिखाने वाले हैं। इसके लिए हम गुरुदेव जी के चरणों में कृतज्ञता पुष्प अर्पण करेंगे। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन सर्व युगों में और सभी विशिष्ट जीवों द्वारा होता आ रहा है। श्री गणेश प्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। अग्र पूजा का मान श्री गणेश का होता है। कोई भी व्रत उपवास हो, पूजा अर्चा हो, मंगल कार्य हो, समारोह हो, किसी भी देवता का पूजन हो, सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजन किया जाता है, ये हमें पता ही है। ऐसे श्री गणेश का कृपाशीर्वाद संपादन करने के लिए आरंभ में हम उन्हें भावपूर्ण प्रणाम करेंगे और उनकी गुण महिमा का वर्णन करते हुए भावपूर्ण स्तुति करेंगे। हे श्री गजानन, हे गणराया, हम सर्वप्रथम आपको प्रणाम करते हैं। आप स्वयं मंगलमय है। सभी का मंगल करने वाले हे श्री गणराया, हम संपूर्ण रूप से आपकी शरण कर भावपूर्ण वंदना कर रहे हैं। हे श्री गणेश, सिंदूर से लेपन किया हुआ आपका ये रूप अत्यंत मनोहर है। उस पर लगा चंदन का लेप आप पर बहुत खिल रहा है। आपके इस दिव्य मनोहर रूप को देखकर हमारा मन उस रूप में ही दंग हो गया है और जीव आपके चरणों में नतमस्तक हो गया है। हे गौरी पुत्र, हे भालचंद्र, आप कृपा के सागर हो। भक्तों को इच्छित वर प्रदान करने वाले हे वरद विनायक, हे करुणाकर, आप हमारे सर्व विघ्नों का लय करने वाले, नाश करने वाले हैं। हम भक्तों की चिंता का हरण करने वाले आप ही चिंतामणि हैं। आपकी कृपा की छत्र छाया सदैव हम पर रहने दे गणराया। हे भगवान, हम आपके श्री चरणों में संपूर्ण शरण आए हैं। आपको अत्यंत मनोभाव से कोटि 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 वंदन कर रहे हैं। श्री गणेश को भावपूर्ण वंदन कर उनकी स्तुति करते हुए साक्षात श्री गणराया का अस्तित्व भक्ति सत्संग में अनुभव होने लगा है। इस भक्ति सत्संग के कारण गणेश चतुर्थी के पहले ही श्री गणेश का सूक्ष्म अस्तित्व और उनका प्रचंड तत्व हमारे लिए कार्यरत हो गया है। इसकी आनंददायी अनुभूति हो रही है। यही आनंददायी अनुभूति लेते हुए श्री गणेश हमें क्या सिखा रहे हैं उसका अवलोकन करेंगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव है, पालनकर्ता श्रीमन नारायण एवं लयकर्ता भगवान शिव है। संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार अच्छे से चलने के लिए इन तीनों देवताओं का विशेष महत्व है। फिर भी श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है, अर्थात सबसे पहले श्री गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी ऐसे अनेक देवताओं ने भी घनघोर युद्ध के समय श्री गणेश जी का ही पूजन कर उनकी स्तुति कर कार्य सिद्धि कर ली। धर्म कार्य में जब जब विघ्न आते हैं तब तब प्रत्येक बार श्री गणेश ने देवताओं की सहायता की है। भगवान विष्णु और शिव तो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। समस्त विश्व का पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। इसलिए ये दोनों ही अपना अपना कार्य करने में समर्थ है। तब भी श्री गणेश का पूजन क्यों करते होंगे? उसका रहस्य अब श्री गणेश जी की कृपा से हमारे समक्ष उजागर होने वाला है। श्री गणेश का सिद्धि विनायक रूप हम सभी को पता है। ये सिद्धि विनायक साक्षात श्री विष्णु की भक्ति के कारण साकार हुआ है। वो कैसे, इसकी सुंदर कथा अब हम सुनेंगे। महाराष्ट्र के नगर जिले में स्थित सिद्धटेक में सिद्धि विनायक गणपति का मंदिर है। ये मंदिर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध एवं जागृत अष्टविनायकों में से एक है। ये श्री विष्णु को सिद्धि प्राप्त करवाने वाले हैं। कार्य सिद्धि कराने वाले ये सिद्धि विनायक अष्टविनायकों में से दूसरे गणपति हैं और अष्टविनायकों में से दाई सुंड के एकमेव गणपति है। प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मदेव को परमात्मा की कृपा से सृष्टि निर्मिति की प्रेरणा हुई। इसके लिए ब्रह्मदेव ने श्री गणेश के गंग इस एकाक्षरी मंत्र का जप कर तपश्चर्या की। इसके उपरांत सृष्टि की निर्मिति की। उस समय क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु के कान से मधु एवं कैटप नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों भूख से व्याकुल हो गए और यहाँ वहां देखने लगे। तब उनकी दृष्टि ब्रह्मदेव पर पड़ी। फिर क्या, ब्रह्मदेव को ही खाते समझकर वे उनकी दिशा में दौड़ने लगे। उन्हें देखकर ब्रह्मदेव भयभीत हो गए। फिर उन्होंने व्याकुल होकर योग माया से विनती की, हे देवी, अब आप ही भगवान विष्णु को जागृत करें, अन्यथा ये असुर मुझे खा जाएंगे। तब योग माया की प्रेरणा से भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागृत हुए। ब्रह्मदेव पर आया संकट देखकर भगवान विष्णु ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उस शंख की प्रचंड ध्वनि से त्रिलोक कांपने लगा। यह शंख ध्वनि सुनकर मधु कैटभ सचेत हो गए। वे ब्रह्मदेव को छोड़कर भगवान विष्णु की दिशा में युद्ध के लिए भागे। उस समय श्री विष्णु और मधु कैटभ में घनघोर युद्ध हुआ। ये युद्ध 5,000 वर्ष तक चला। तब भी विष्णु उन दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु ने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण किया और वन में जाकर वीणा बजाते हुए श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। श्री विष्णु के इस गीत से तीनों लोग मुग्ध हो गए। श्री विष्णु के वे स्वर कैलाशपति भगवान शिव के कानों में पड़े। उन्होंने अपने गणों को उस संगीतज्ञ को लेकर आने की आज्ञा दी। शिव गण उसे लेकर आए। गंधर्व वेशधारी श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और उनके आदेश अनुसार वीणा के तार छेड़े। ये सुनकर माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय, इसके साथ ही अन्य सभी देवी देवता भी मुग्ध हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उस संगीतज्ञ को वर मांगने के लिए कहा। तब गंधर्व वेशधारी भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, आप वर देने वाले हैं तो ऐसा वर दे कि मधु कैटभ नामक असुरों का नाश हो। तब शंभु शंकर ने पहचान लिया कि गंधर्व वेश में साक्षात श्री विष्णु है। वे हंसकर बोले, भगवन, इस गंधर्व वेश में आने की क्या आवश्यकता थी? आप तो भगवान विष्णु हैं। तब श्री विष्णु बोले, हे देवाधिदेव महादेव, आपको प्रसन्न करने के लिए ही मैंने ऐसा किया। हे शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष, अब शीघ्र ही कुछ तो उपाय करें जिससे उन असुरों का नाश हो सकेगा। तब भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में बोले, हे रमानाथ, इन असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो श्री गणेश की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। वे ही असुरों को अपनी माया से मोहित करके वश में कर सकते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्री विष्णु को श्री गणेश पूजन की विधि बताई। तदुपरांत भगवान श्री विष्णु ने श्री गणेश की 100 वर्ष उपासना की। श्री विष्णु के घोर तप से प्रसन्न होकर गजवदन श्री गणेश प्रकट होकर बोले, मैं आपके तप से प्रसन्न हो गया हूँ, जो चाहिए वो वर मांगे। तब श्री विष्णु वंदन करते हुए बोले, हे विघ्न विनायक, मधु कैटभ नामक असुर अत्यंत प्रबल हो गए हैं। वे मेरे वश में नहीं आ रहे। उनका वध करने के लिए कोई उपाय बताए। हे विघ्नहर्ता, इसके साथ ही मुझे तुम्हारी अनन्य और दुर्लभ भक्ति भी प्रदान करने की कृपा करें। तब श्री गणेश बोले, हे वैकुंठनाथ, ऐसा ही होगा। शीघ्र ही आपके हाथों से दोनों असुर मारे जाएंगे। इस कारण चतुरानंद ब्रह्मदेव का भय भी दूर होगा और तुम्हारी कीर्ति भी सर्वत्र फैलेगी। हे विष्णु, अब इस कार्य में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा वर देकर और सिद्धि प्रदान कर भगवान गणेश्वर अंतर्धान हो गए। तदुपरांत त्रिलोकीनाथ विष्णु अपने स्थान लौट आए। उनके लौट आने की दोनों दैत्य राह ही देख रहे थे। तुरंत दोनों असुर युद्ध के लिए सज्ज हुए। भगवान विष्णु भी युद्ध हेतु सज्ज ही थे। दोनों असुरों को देखते ही श्री विष्णु ने उनसे युद्ध करना आरंभ किया। उन दैत्यों पर प्रहार करने से पूर्व श्री विष्णु ने गणेश जी का स्मरण किया। उनमें महाभयंकर युद्ध आरंभ हुआ। विनायक की कृपा से विष्णु को सिद्धि प्राप्त हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से मधुकैटभ का वध किया। इस प्रकार गणेश जी के आशीर्वाद से श्री विष्णु ने दोनों दैत्यों का वध किया। श्री विष्णु को तभी से मधु राक्षस का वध करने वाले मधुसूदन और कैटभ राक्षस पर विजय प्राप्त करने वाले कैटभ जी कहने लगे। श्री विष्णु ने जिस स्थान पर तप करके श्री गणेश को प्रसन्न किया था और जिस स्थान पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, उसी स्थान पर उन्होंने एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। उसमें श्री विनायक की मूर्ति स्थापित की। इस स्थान पर श्री विष्णु को कार्य सिद्धि हुई, इसलिए इस स्थान को सिद्ध टेक कहते हैं। श्री क्षेत्र सिद्ध टेक नगर जिले में करजत तालुका में भीमा नदी के तट पर बसा एक गांव है। यहाँ विनायक को श्री सिद्धि विनायक भी कहते हैं। आज भी वो स्थल गणेश का पवित्र तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। रिद्धि सिद्धि सहित श्री सिद्धि विनायक महागणपति का रूप है। जब वो ईश्वर के रूप में कार्यरत होता है, तब काल भी उनकी आज्ञा से ही कार्यरत होता है। इसलिए उनकी कृपा से हम सभी को आपातकाल में तरने के लिए बल और उनके कृपा आशीर्वाद मिलने वाले हैं। हम सभी एक बार श्री सिद्धि विनायक भगवान का स्वरूप आंखों के सामने लाएंगे। उनके दिव्य रूप को भक्तिपूर्ण नमन करेंगे। श्री सिद्धि विनायक भगवान के कृपाशीर्वाद भर भर कर ग्रहण करेंगे। श्री विष्णु ने जिस प्रकार भगवान श्री गणेश की आराधना की है, उसी प्रकार भगवान शिव ने भी श्री गणेश की आराधना की है। उस विषय में सुंदर प्रसंग सुनकर श्री गणेश के प्रति अंतकरण में भाव अनुभव करेंगे। पुराण काल में गुत्समत नामक एक ऋषि पुत्र थे। उन्होंने वरदेश्वर श्री गणेश की घोर तपस्या की। उस तपश्चर्या से प्रसन्न होकर श्री गणेश द्वारा दिए वर से गुत्समत को अत्यंत बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। गुत्समत का ये पुत्र उन्हें आई चीख से प्रकट हुआ था। उन्होंने उस बालक को गणेश की उपासना करने के लिए कहा और मंत्र दिया। उस अनुसार उस बालक ने वन में जाकर एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर घोर तपस्या की और वरदराज गणेश को प्रसन्न कर लिया। उसकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर एक अति भयंकर नाद करते हुए गणाधीश्वर वरदराज उसके आगे प्रकट हुए। उन्होंने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब वो बालक बोला, हे गणाधीश्वर, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं, तो मुझे त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने का वर दे। देवता, दानव मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सर्प सभी मेरे अधिपत्य में हो। इंद्रादि लोकपाल मेरी सेवा करे और सभी सुख उपभोग कर मुझे मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा वर उसने मांगा। तब वरदराज गणपति उसे वर देते हुए बोले, तथास्तु। तुम सदैव भय रहित और त्रिलोक विजेता होगा। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के तीन नगर प्रदान करता हूँ। ये तीनों नगर अभेद्य होंगे। भगवान शिव के अतिरिक्त कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकेगा। ये तीनों नगर शिव के एक ही बाण से टूटेंगे। इन तीनों नगरों के स्वामी होने से आगे तुम त्रिपुरासुर इस नाम से पहचाने जाओगे। ऐसा कहकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। तदुपरांत उस ऋषि पुत्र ने वरदराज गणेश मूर्ति की स्थापना कर पूजा की और वह त्रिलोक पर विजय पाने के लिए बाहर निकला। उसने धरती, स्वर्ग और पाताल इन तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। देवताओं सहित इंद्र को हराया। सर्वलोक, देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक पर विजय पाकर त्रिपुरासुर अत्यंत उन्मत्त हो गया। भयभीत और हताश हुए देवता तथा ऋषि मुनि वनों में, पर्वत की गुफाओं में छिप गए। उनकी ये दुर्दशा देखकर देवर्षि नारद जी ने उन्हें श्री गणेश की पूजा और स्तुतिगान करने के लिए कहा। सभी ने विघ्न विनाशक की स्तुति की और इस त्रिपुरासुर के कारण आए हुए भयानक संकट से छुड़ाने की उनसे विनती की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री गणेश ने उन्हें बताया कि हे देवगण, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अब त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। श्री गणेश के इन अभय वचनों से देवताओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने श्री गणेश से पुनः विनती की, आप शीघ्र ही कुछ उपाय योजना करें और त्रिपुरासुर का नाश करें। तब गणेश ने उनसे कहा, ये सर्व काल की महिमा है। उचित समय आते ही इस संकट का निवारण होगा, परंतु उसके लिए कुछ काल बीतना होगा। तब तक तुम मेरी उपासना करते रहो। तुम्हारी उपासना का उचित फल तुम्हें योग्य समय आने पर मिलेगा। की गई उपासना का फल कभी भी निष्फल नहीं होता। इतना कहकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। हताश हुए देवता पुनः श्री गणेश की उपासना में लग गए। यह त्रिपुरासुर का अहंकार बहुत अधिक बढ़ गया था। अब वो कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। ये ज्ञात होते ही देवता भी अपनी सेनाओं के साथ भगवान शिव की सहायता के लिए दौड़े आए। सुर और असुरों में घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। दैत्यों की बलवान सेना के आगे देवताओं की सेना नहीं टिक पा रही थी। वे युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। दैत्यासुर की आत्यंतिक प्रबलता के कारण भगवान शिव चिंतित हो गए। उतने में ही नारद मुनि वहां आए। तब शिव शंकर उनसे बोले, हे नारद, अभी का ये प्रसंग कठिन है, इसका कोई उपाय सुझा हो तो बताए। तब देवर्षि विचार कर बोले, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवाधिदेव महादेव, आप विघ्नेश्वर की पूजा कर युद्ध का आरंभ करेंगे तो अपनी विजय सुनिश्चित है। हे महेश्वर, ये बात सभी को पता है कि आपके पुत्र श्री गणेश से वरदान प्राप्त करके ही त्रिपुरासुर अजेय हो गया है। इस कारण अब उस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अब तो ये स्थिति है कि वो आपको अर्थात साक्षात सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति से बचने के लिए श्री गणेश का पूजन ही करना होगा। तब भगवान शंकर दंडकारण्य में गए और वह कठोर तप आरंभ किया। इस तपश्चर्या में 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तप करते हुए एक बार भगवान शिव को जम्हाई आई। उस समय शिव के मुख से एक तेजोमय पुरुष प्रकट हुआ। उसके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी, मस्तक पर चंद्र था, देह कांति भी चंद्र समान थी, कंठ में मुंड माला, सर्पों के आभूषण, मुकुट और बाजूबंद धारण किए थे। उसके तेज से अग्नि, सूर्य और चंद्र का तेज भी फीका पड़ रहा था। उसकी भुजाओं में 10 आयुध थे। उस तेजोमय पुरुष को देखकर भगवान शिव विचार करने लगे, क्या ये मेरा ही दूसरा रूप है अथवा त्रिपुरासुर की कोई माया? कहीं ये स्वप्न तो नहीं? अथवा आदिदेव विघ्न विनाशक विनायक ही साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गए हैं? तब वरदराज श्री गणेश ने उनके मन के विचार जान लिए और वे बोले, प्रभु, आप जो विचार कर रहे हैं, मैं वही आदिदेव विनायक हूँ। आपने मेरा 100 वर्ष तप किया है, निरंतर मेरा चिंतन किया है, इसलिए मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। आपकी कामना पूर्ण होने हेतु मैं अब यहाँ प्रकट हुआ हूँ। आपको जो चाहिए वो मांगे। तब शिवजी ने वरदराज की स्तुति की और समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए, त्रिपुरासुर के नाश के लिए उपाय बताने की विनती की। तब वरदराज बोले, मेरे बीज मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप उस पर लक्ष्य साधेंगे तो आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी। आपके स्मरण करते ही मैं आपके साथ आऊंगा और आपका कार्य पूर्ण करूंगा। गंग इस मेरे बीज मंत्र के उच्चारण से बाण छोड़ेंगे तो त्रिपुरासुर के 3 नगर उध्वस्त हो जाएंगे। ये सुनकर भगवान शिव ने श्री गणेश के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण की। वे बोले, गणपति का ये स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। तदुपरांत भगवान शिव ने देवताओं की सेना एकत्र की और त्रिपुरासुर की राजधानी की दिशा में चल दिए। श्री गणेश का स्मरण करते ही विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश वहां प्रकट हुए। वे स्वयं वीर वेश में देवसेना में सबसे आगे चल रहे थे। त्रिपुरासुर जानता था कि उसके ये 3 नगर अभेद्य हैं, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परंतु श्री गणेश द्वारा बताए अनुसार भगवान शिव ने गंग इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए बाण से निशाना लगाया। उस एक ही बाण में त्रिपुरासुर के तीनों नगर उध्वस्त हो गए। उसी के साथ उन्होंने त्रिपुरासुर का भी वध किया। त्रिपुरासुर के वध के कारण देवता भगवान शिव को त्रिपुर का नाश करने वाले त्रिपुरारी कहने लगे। सर्वदेव सेना भगवान त्रिपुरारी सहित श्री गणेश की भी जय जयकार करने लगी। त्रिपुरारी शिव शंकर ने उस स्थान पर श्री गणेश की स्थापना की। आज वो स्थान महाराष्ट्र के पुणे जिले के रांजणगांव में है। अष्टविनायकों में से चौथे गणपति रांजणगांव के महागणपति के रूप में जाने जाते हैं। जगत की उत्पत्ति होने से पूर्व गणेश तत्व निर्गुण स्वरूप में था, इसलिए उस महदाकारी तत्व को महागणपति कहते हैं। महागणपति की व्याप्ति कितनी है? तो चंद्रमा अर्थात सिर, पृथ्वी अर्थात पेट और सप्तपाताल अर्थात पैर है। इस प्रकार महागणपति ने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप लिया है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड ही महागणपति में समाया है। ऐसे महागणपति के चरणों में संपूर्ण शरण जाकर हम मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। भगवान श्री विष्णु और भगवान शंकर ने भी जिनकी आराधना की है, उन महागणपति की गणेश चतुर्थी के निमित्त से हम भी आराधना करेंगे। हमारी साधना में आने वाली सभी बाधाएं दूर करने के लिए इस गणेश चतुर्थी के माध्यम से श्री गणेश प्रत्यक्ष इस पृथ्वी तल पर अवतरित होने वाले हैं। इस भाव से हम उनका भावपूर्ण स्वागत करेंगे। गणेशोत्सव के इस काल में श्री गणेश की कृपा संपादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कृति सर्वत्र की जाती है, वो है श्री गणेश को लाल फूल, दुर्वा तथा सिंदूर अर्पण करना। इसके साथ ही उन्हें प्रिय मोदकों का भोग चढ़ाना। इन सभी घटकों में श्री गणेश तत्व अधिक प्रमाण में आकृष्ट होता है। इस वर्ष इन्हीं घटकों का माध्यम बनाकर हम सभी आंतरिक गणेशोत्सव मनाएंगे। भगवान श्री गणेश की भावपूर्ण भक्ति करेंगे। गणेशोत्सव में गणेश की पूजा करते समय श्री गणेश जी की कृपा संपादन करने के लिए उनके प्रति भक्ति दृढ़ होने के लिए ये पूजन कर रहे हैं, इस भाव से पूजन करेंगे। सर्वप्रथम हम दुर्वा के विषय में जान लेते हैं। गणेश पूजा में दुर्वा का स्थान अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना गया है। जिस प्रकार भगवान शिव की पूजा बेल चढ़ाए बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार श्री गणेश का पूजन दुर्वा बिना पूर्ण नहीं होता। दुर्वा का इतना महत्व क्यों है? श्री गणेश को दुर्वा क्यों प्रिय है, ये पहले समझ लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार पुराण काल में अंगलासुर नामक एक दैत्य था। वो अत्यंत कपटी और अत्याचारी था। उसका शक्ति सामर्थ्य इतना था कि वह मनुष्य को, ऋषि मुनियों को ही निगल जाता था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही मची थी। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता, ऋषि मुनि कैलाश लोक में भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के दर्शन लेकर उन्होंने अंगलासुर के अत्याचारों के विषय में उन्हें बताया और उसका नाश करने की प्रार्थना की। भगवान शिव तब बोले, अंगलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ही शरण जाना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने सर्व देवताओं को श्री गणेश के पास जाने के लिए कहा। उस अनुसार देवता और ऋषिगण श्री गणेश के पास गए। श्री गणेश की शरणागत भाव से प्रार्थना और स्तुतिगान किया। श्री गणेश को अंगलासुर के अत्याचारों के विषय में बताया। तीनों लोकों पर छाए इस संकट के निवारण करने की आर्तता से विनती की। सर्व देवताओं की प्रार्थना सुनकर कृपावत्सल श्री गणेश ने अपना रूप बदल लिया। वे अंगलासुर से तिगुनी आकार के हो गए। उन्होंने उस अंगलासुर को उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और निगल गए। सभी पर आए इस महाभयंकर संकट का निवारण किया। अब तमोगुणी, अत्याचारी, अहंकारी और दुष्ट दैत्य पेट में जाने के कारण श्री गणेश के पेट में प्रचंड दाह होने लगी। अनेक उपाय करने के पश्चात भी वो दाह कम नहीं हो रही थी। तब उस दाह को शांत करने के लिए सभी देवता और ऋषि मुनियों ने श्री गणेश पर दुर्वा चढ़ाई। गणेश जी के मुख को छोड़कर उनके संपूर्ण शरीर पर दुर्वा चढ़ाई। उनके शरीर को पूरी तरह से दुर्वा से ढक दिया। उन्हें दुर्वा का रस भी प्राशन करने दिया। शीतलता ये दुर्वा का गुणधर्म होने से उसे ग्रहण करने पर श्री गणेश के पेट की दाह शांत हो गई। तब से श्री गणेश को दुर्वा अर्पण करना आरंभ हो गया। शीतलता ये गुणधर्म वाली दुर्वा की एक और विशेषता है, जो दूर को पास लाए अर्थात दुर्वा। इसका अर्थ है दूर फैले हुए श्री गणेश के पवित्रकों को अर्थात गणेश तत्व के चैतन्य कणों को जो पास लाती है वो है दुर्वा। ऐसी दुर्वा को श्री गणेश को अर्पण करते हुए हम श्री गणेश के और अधिक निकट जा रहे हैं। भगवान की दिशा में और एक कदम बढ़ा रहे ऐसा भाव रखेंगे। श्री गणेश को दुर्वा अर्पण करने का अर्थ है गणेश मूर्ति में देवत्व जागृत करता और उस देवत्व को दीर्घ काल तक टिकाना। उसके लिए विशिष्ट पद्धति से दुर्वा अर्पण करनी होती है। दुर्वा मूर्ति को अर्पण करने से पहले उसे पानी में रखते हैं, जिससे वो ताजी बनी रहे। पूजा के समय मुख छोड़कर संपूर्ण गणेश मूर्ति दुर्वा से ढक देते हैं। इससे मूर्ति के आसपास गीली दुर्वाओं की विशिष्ट सुगंध आती है। मूर्ति पर दुर्वा चढ़ने से ये गंध गणपति के आकार में सर्वत्र प्रक्षेपित होती है। इसी को मूर्ति जागृत हुई ऐसा कहते हैं। दुर्वा की ये मंद सुगंध मन को आकृष्ट करती है। जब तक वो सुगंध रहती है तब तक श्री गणेश तत्व के पवित्र अधिक मात्रा में कार्यरत रहते हैं। ये सब अनुभव करने के लिए श्री गणेश जी को हम आज बहुत दुर्वा अर्पण करेंगे। अब हम श्री गणेश का भावपूर्ण स्मरण करेंगे। आंखें बंद कर स्मरण करते ही हमें श्री गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं। एकदंत वक्रतुंड लंबोदर ऐसे विविध विशेषणों से युक्त श्री गणेश जी का अत्यंत मनोहर रूप हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे श्री गणेश को हम कोटि कोटि नमन करते हुए भावपूर्ण प्रार्थना कर रहे हैं। हे श्री गणेश, आपके ईश्वरीय तत्व का लाभ हम सभी को होने दें। आपातकाल में आने वाले संकटों में आप ही हमारी रक्षा करें गजानन। अब श्री गणेश को भावपूर्ण दुर्वा अर्पण करेंगे। हमारे सामने रखी थाली में ढेर सारे दुर्वा के गुच्छे रखे हैं। उनमें से एक एक गुच्छे लेकर हमने श्री गणेश को दुर्वा अर्पण करना आरंभ किया है। प्रत्येक दुर्वा का गुच्छा अर्पण करते समय हम श्री गणेश का भावपूर्ण नाम जप कर रहे हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ऐसा नाम जप करते हुए हम प्रथम श्री गणेश के चरणों पर दुर्वा अर्पण कर रहे हैं। दुर्वा की मंद गंध और श्री गणेश की मनोहर मूर्ति से प्रक्षेपित होने वाला चैतन्य हमारे अंतकरण को धीरे से स्पर्श कर रहा है, इसलिए अनजाने में हमारा भी भाव जागृत हो रहा है। अब हमारे द्वारा अर्पण की गई दुर्वा से श्री गणेश के चरण पूर्णतः आच्छादित हो गए हैं। श्री गणेश की ये मूर्ति देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे उन दुर्वाओं ने श्री गणेश के चरणों को स्पर्श किया, वैसे हमारे अंतकरण को भी भक्ति का स्पर्श हुआ है। हमें बहुत शांत लग रहा है। हमारा दुर्वा अर्पण करना जारी ही है। मुख से हम श्री गणेश का नाम जप कर रहे हैं। अब धीरे धीरे दुर्वा अर्पण करते करते श्री गणेश का मुख छोड़ वे संपूर्ण रूप से दुर्वा से ढक गए हैं। हरी हरी दुर्वा में केवल श्री गणेश का सुंदर रक्तवर्णी मुखमंडल सुशोभित है। श्री गणेश प्रसन्न होकर हमारी ओर देख रहे हैं। भक्ति युक्त दुर्वाओं से ढके श्री गणेश के इस सुंदर रूप का हम सभी भावपूर्ण दर्शन लेंगे। श्री गणेश को हम भावपूर्ण नमस्कार करेंगे। श्री गणेश बहुत आनंदी दिखाई दे रहे हैं। श्री गणेश से हमारी ओर आनंद तरंगे प्रक्षेपित हो रही हैं, इसलिए हम भी आनंद अनुभव कर रहे हैं। दुर्वा की मंद सुगंध सर्वत्र फैली हुई है। वह मंद सुगंध और उसमें विद्यमान श्री गणेश का चैतन्य हम प्रत्येक श्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। दुर्वा अर्चन के कारण निर्माण हुई शीतलता हमें अनुभव हो रही है। हमारे मन को भी शांत और आह्लाददायक लग रहा है। वह दुर्वा मानो अपने सर्व भक्तों की भक्ति का लेप ही है। हम सभी ने अपनी भक्ति से ही श्री गणेश को आच्छादित किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे ये दुर्वा की सुगंध न होकर सभी भक्तों के भक्ति की आनंद गंध सर्वत्र फैली है। आंखें खोलते ही हम सभी को अत्यंत आनंद अनुभव हो रहा है। इतना आनंद जो आज तक हमने कभी अनुभव नहीं किया, ऐसा आनंद अब हम अनुभव कर रहे हैं। श्री गणेश का दर्शन लेते समय ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति ऐसे ही टिकी रहे। दुर्वा की मंद सुगंध वातावरण में श्री गणेश के सान्निध्य में अनुभव करते हुए उनकी भक्ति के आनंद में डूबे ही रहे, ऐसे हमें लग रहा है। श्री गणेश की कृपा से हम आज ये भक्तिमय आनंद ले सके, इसलिए उनके चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। श्री गणेश को प्रिय और श्री गणेश के चरणों पर अर्पण किए जाने वाले दुर्वा में कौन कौन से गुण हैं, ये सीखकर हम भी वे गुण आत्मसात करने का प्रयत्न करेंगे। श्री गणेश को विनम्रता एवं सरलता बहुत प्रिय है। दुर्वा में अत्यंत नम्रता, लीनता और सहजता से झुकने का, न्यूनता लेने का गुण है, इसीलिए वह श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। महाप्रलय में बड़े बड़े वृक्ष उखड़ कर बह जाते हैं, परंतु दुर्वा नहीं। दुर्वा के इन गुणों के कारण ही महाप्रलय जाने के पश्चात भी वो अपने स्थान पर बनी रहती है। गुरुदेव जी ने यह हमें सिखाया है कि लीनता, नम्रता जैसे गुण साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन गुणों के आधार पर हम अपने अहंकार पर मात कर सकते हैं। मूलतः जिसमें अहंकार नहीं है, ऐसी दुर्वा से हमें अपनी साधना के लिए अत्यंत पूरक गुण सीखने मिलते हैं। ये गुण अपने में आने के लिए श्री गणेश की शरण जाकर प्रार्थना करेंगे। दुर्वा सतत नम्र भाव में होने से प्रत्यक्ष भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार कितने भी संकट आए, कठिन प्रसंग आए, तब भी कर्तापन त्याग कर भगवान की गुरु की शरण जाएंगे। नम्रता से, शरणागति से उनके श्री चरणों में झुक कर रहेंगे तो वे ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने वाले हैं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा मन में रखकर उसके लिए सतत प्रयत्नरत रहेंगे। दुर्वा को कितना भी तोड़े काटे तब भी उनकी जड़े अपने आप ही चारों दिशाओं में फैल जाती है, अर्थात वे अविनाशी होती है, वे कभी भी नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार कितनी भी अड़चनें आई तब भी अपने अंतर की भक्ति में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और भक्ति में सतत वृद्धि होती रहे, ऐसा आशीर्वाद हम श्री गणेश से मांगेंगे। हे श्री गणेश जी, हे श्री सिद्धि विनायक, हमारी देह और समस्त संसार नश्वर है, परंतु भगवान की कृपा से हमारी भक्ति अमर होकर वो शाश्वत ईश्वर के चरणों में पहुंचे, इसके लिए ही हमारी प्रत्येक श्वास हो, यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। दुर्वा के तीन दल होते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर, भाव के स्तर पर विचार करें तो दुर्वा के इन तीन दलों का क्या अर्थ है? वो है अपने अंतर का भाव, लगन और श्रद्धा। श्री गणेश को दुर्वा अर्पण किए बिना जैसे उसकी पूजा पूर्ण नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारे अंतर का भाव, लगन और श्रद्धा रूपी दुर्वा दल अर्पण किए बिना अपनी प्रत्येक सेवा, प्रत्येक कृति श्री गुरु चरणों में कैसे समर्पित होगी? इसीलिए इस गणेशोत्सव के निमित्त से हम सभी ध्येय रखेंगे कि हमारी प्रत्येक कृति के माध्यम से भाव, लगन और श्रद्धा रूपी दुर्वा दल गुरु चरणों में अर्पण करना है। दुर्वा अर्पण करने के साथ ही श्री गणेश को अत्यंत प्रिय नैवेद्य अर्थात मोदक अर्पण किए जाते हैं। मोदक अर्थात आनंद का प्रतीक। आनंद स्वरूप भगवान गणेश ने अपने हाथ में मोदक के रूप में आनंद धारण किया है। वे अपने सभी भक्तों पर अखंड रूप से आनंद का ही वर्षाव करते हैं। ऐसे आनंददाता गणपति के इस प्रिय नैवेद्य से अर्थात मोदक से हमें क्या सीखना है, ये अब हम देखेंगे। ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है। उनके स्मरण से, उनकी भक्ति से केवल और केवल आनंद ही प्राप्त होता है। हम जो साधना कर रहे हैं उसका मर्म भी आनंद ही है। मनुष्य जन्म का सर्वोच्च अंतिम ध्येय भी आनंद की प्राप्ति ही है। आनंद प्राप्ति के लिए साधना करते समय हम जो भी कृति करेंगे, वो प्रत्येक कृति करते समय हमें आनंद ही मिलना चाहिए। प्रत्येक कृति करते समय मिलने वाले उस आनंद में ही आंतरिक समाधान भी छिपा होता है। इस सत्संग से सीखकर हम सभी ध्येय रखेंगे कि गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में प्रत्येक कृति करते समय दुर्वा तथा मोदक इन गणेश तत्व आकृष्ट करने वाले घटकों के अनुरूप भाव प्रयत्न करने हैं। एक, हम जो भी सेवा करते हैं या जो भी कृति करते हैं, वह प्रत्येक सेवा, प्रत्येक कृति अर्थात श्री गणेश जी का ही पूजन है, ऐसा भाव रखेंगे। दो, प्रत्येक कृति रूपी गणेश पूजन करते समय श्री गणेश जी को भाव लगन और श्रद्धा रूपी दुर्वा दल अर्पण करेंगे। 3, प्रत्येक कृति पूर्ण होने के उपरांत उससे प्राप्त हुए आनंद के लिए हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, अर्थात श्री गणेश जी को आनंद रूपी मोदक का भोग चढ़ाएंगे। इस कारण श्री गणेश उसकी तुलना में अनेक गुना अधिक आनंद का प्रक्षेपण हमारी ओर करते हैं, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति लेंगे। इस अनुसार प्रयत्न कर अब आध्यात्मिक स्तर पर गणेशोत्सव मनाएंगे। अभी हमने श्री गणेश जी के व्यापक रूप की प्रत्यक्ष स्तुति की। आज के भक्ति सत्संग के समाप्ति से पूर्व साक्षात महागणपति का ये दिव्य सर्वव्यापी अस्तित्व अनुभव करते हुए हम उनके चरणों में संपूर्ण शरण जाकर आर्तता से भक्ति याचना करेंगे। हे श्री गणेश, हे एकदंत, हम संपूर्ण रूप से आपकी शरण आकर आपसे आर्तता से याचना कर रहे हैं। हे गणेश्वर, आपके चरणों में हमारी भक्ति समर्पित करवा लीजिए। जो आप पर प्रेममय भक्ति करते हैं, ऐसे आपके भक्तों का सान्निध्य हमें निरंतर मिलने दे। हे गणेश, हम सबके साथ लीनता से शरणागत भाव से आचरण कर पाए, ऐसी भक्ति का दान आप ही हमें दीजिए। हे गजानन, हम दीन पतित होते हुए भी आपकी संपूर्ण शरण में आए हैं। हे श्री गणेश जी, हमसे अनंत पाप हुए हैं, हम अपराधी हैं। हे करुणामय गजानन, दयावंत होकर हम पर कृपा कीजिए। भगवान, हमारा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे गणेश भगवान, हे एकदंत, हम संपूर्ण रूप से आपकी शरण आए हैं, हमारा उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान की कृपा से ये दिव्य भक्ति सत्संग संपन्न हुआ, इसलिए हम भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।